मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 17 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, दो दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और मुझे विश्वास है कि अब आप एक नई मानसिकता के साथ, एक टटकेपन के साथ इस आने वाले सप्ताह का स्वागत करने के लिए मुस्तैदी के साथ तैयार हो चुके होंगे। तो आइए आज की इस सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि हमारी धारणाएं बनती कैसे हैं। दरअसल मेरे इस विषय का संबंध कहीं न कहीं इससे पहले जो हम विचारों पर बात कर रहे थे उससे है। मैंने कहा कहीं न कहीं, यानी कि सीधे सीधे तो मैं उसी पर बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस मायने में इस विषय का संबंध उस पहली बात से है कि आपको ध्यान होगा मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में चर्चा की थी और आप में से बहुत से स्टूडेंट ने फिर मुझसे पूछा कि सर ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ी सी और बातें बताइए, इसको कैसे हम ठीक करें, इसको कैसे हम मजबूत करें, इसको कैसे हम समझें। लेकिन मैंने उस पर अलग से चर्चा नहीं की थी। समय समय पर मैं इस बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, लेकिन हो सकता है कि वो सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर बात न हो करके एक तरीके से व्यावहारिक रूप में जो हम महसूस करते हैं, जिस तरीके से हम सबकी रचना होती है, रचना यानी कि जो मानसिक संरचना हमारी बनती है, उसके माध्यम से ये बातें आपके सामने आती जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड पर सीधे बात करने लगूं तो आप सबको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, और जब बात सिद्धांत की आती है, प्रिंसिपल या फिलॉसफी की आती है, तो लोग थोड़े से छिटकने लगते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, आप सब अपने अनुभव से खुद परिचित होंगे। तो मैंने ये सोचा कि प्रकारांतर से बात की जानी चाहिए, मतलब डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट रूप में बात की जानी चाहिए। तो मित्रों, आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूं अपने एक अनुभव से जो बिल्कुल अभी का ताजा अनुभव है। ये मुश्किल से चार पांच दिनों की या तीन चार दिन पहले की बात होगी। भोपाल में एक बहुत खूबसूरत जगह है, जनजाति संग्रहालय, ये वो जगह है जहां हम लोगों की क्लास लगती है, उसके पास ही है, और जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो इस जगह से बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी होंगे। जनजाति संग्रहालय, और उस जनजाति संग्रहालय में अफगान म्यूजिक का प्रोग्राम था, अफगानिस्तान के संगीत का, और गीत भी उसमें शामिल थे। तो मैं और मेरी पत्नी उस प्रोग्राम में गए, और जब हम लोग प्रोग्राम से बाहर निकले तो मुझे अपने एक प्रिय पाठक मिले जो अपनी पत्नी और अपनी छोटी बच्ची के साथ भी उस प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। बहुत अच्छे यंग लोग और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा और बहुत ही प्रेमी किस्म के सज्जन व्यक्ति। उनसे फिर बातचीत होने लगी, उन्होंने बताया कि मैंने आपकी बहुत सी, हम लोगों ने किताबें पढ़ रखी हैं और हम आपके फैन हैं, तो स्वाभाविक है कि फिर उनसे बातचीत होने लगी। और बातचीत होने के दौरान ही मैंने उनके साथ जो छोटी बच्ची थी उनसे पूछा, 6-7 साल की होगी, कि बेटे तुम कहां पढ़ती हो। तो उसने एक स्कूल का नाम बताया, फिर उस बच्ची की मम्मी ने कहा कि वो पास में ही एक स्कूल है, उसमें यह अभी पढ़ने जाती है, बाद में फिर इसे हम किसी अच्छे स्कूल में करा देंगे, ये उनकी मम्मी ने कहा। अब जैसे ही मम्मी ने ये बात कही, तो अब ध्यान दीजिएगा मेरा विषय अब यहां शुरू हो रहा है, आप कह लीजिए, लेकिन थोड़ी सी बात को ज्यादा रोचक बनाने के लिए, या कह लीजिए कि प्रभावशाली बनाने के लिए, डेफिनेटली मुझे पहले की भी बात कहनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखी, अन्यथा मैं सीधे सीधे इस मुद्दे पर भी आ सकता था। मम्मी की बात सुनने के बाद लड़की कहती है कि नहीं अंकल, उस स्कूल में मेरे जान पहचान वाले बहुत हैं, मेरे परिचित बहुत हैं, ये बात उसने कही। तो उसके कहने का मतलब ये था कि मम्मी ने जो अभी कहा है कि बाद में हम दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करा देंगे, तो मैं दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि इस स्कूल में मेरी जान पहचान हो गई, यानी कि मेरे बहुत से दोस्त हो गए हैं। ये उसके अपने कहने का तरीका था, उस छोटी सी प्यारी बच्ची का। जैसे उसने ये बात कही तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि अच्छा बेटे ये बताओ कि कब से तुम्हारे वो परिचित है, कब से उनसे जान पहचान है। तो बेचारी थोड़ी देर तो सक पकाई कि क्या क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया, लेकिन वो बोली कि अंकल जब से मैं स्कूल जाने लगी। मैंने कहा कि अच्छा बेटे ये बताओ कि क्या स्कूल जाने से पहले वो तुम्हारे परिचित थे, जान पहचान के थे, तुम उनको जानती थी। उसने बोला कि अंकल नहीं। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी जान पहचान तब हुई जब तुम स्कूल जाने लगी, और इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर तुम नए स्कूल में जाना शुरू करोगी तो नए स्कूल में भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारे जान पहचान के लोग हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ बेटे कि जान पहचान शुरू से ही नहीं होती है, जिनसे हम बार बार मिलने लगते हैं, हमारी बातचीत होने लगती है, तो उससे हमारी जान पहचान हो जाती है, जैसे कि तुम हम लोगों को जानती थी। तो उसने बोला कि नहीं। मैं कहा अब तुम जान गई? बोले हाँ अंकल जान गई। तो मैं कहा कि जब तुम अब दोबारा मिलोगी तो कहोगी ना हाँ अंकल हम आपको जानते हैं? बोले हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम चूंकि अभी हम लोगों से मिली तो हमें जान गई, अब एक दो बार और मिलेंगे तो इस जानने में पहचान भी जुड़ जाएगी, क्योंकि तुम हमें देखते ही पहचान जाओगी कि अरे ये तो वही अंकल हैं, ये तो वही आंटी हैं। उस बच्चे के चेहरे पर बड़ा सुकून सा आया जब उनकी मम्मी ने कहा था कि हम इसको बाद में नए स्कूल में करवा देंगे, दूसरे स्कूल में करवा देंगे, तो उसके चेहरे पर एक डर सा मुझे दिखाई दिया। और देखिए बिना उससे पूछे उसने उसको रिएक्ट कर दिया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब उसके दिमाग में, अब आप देखिए जो मैं जिस बात पर आ रहा हूं कि मैंने उसे इस तरीके से समझाने की कोशिश की, यूं कह लीजिए कि मैंने जान पहचान के माध्यम से उसके दिमाग में धारणा कैसे बनती है उसकी एक नींव डाल दी। सामान्यतया होता क्या है, सामान्यतया ये होता है कि पापा मम्मी कह देंगे कि नहीं नहीं बेटे वो तो बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चा घबरा रहा हो तो इससे बच्चे के दिमाग में दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से बैठ जाती है। पहली तो यह कि मैं जो कह रही हूं वो सही है, यानी कि मेरी जान पहचान के वहां लोग हैं तो मुझे वहीं रहना चाहिए, ये बात मैं सही कह रही हूं, जिसे मेरे मम्मी पापा ने या दादा दादी ने इंडोर्स कर दिया, यानी कि उसका समर्थन कर दिया। दूसरी बात यह है कि मैं नई जगह जाने से जो डर रही हूं, मेरा वह डर गलत नहीं है। जो नई जगहें होती हैं वो डरने के लायक ही होती हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये दो तरह की धारणाएं, या कह लीजिए दो तरह की ये विचार उसके अवचेतन मन में घर कर गए। देखिए धारणाएं और विचार में थोड़ा सा फर्क होता है। विचार तो कोई एक चीज होती है, लेकिन धारणाएं तो ऐसी होती हैं जिनसे हजारों विचार पैदा होते हैं। धारणाएं मतलब जड़ का काम करती हैं, रूट का काम करती हैं, और उससे फिर विचार पैदा होते हैं, लेकिन वो धारणाओं के अनुकूल ही होंगे। जैसे हमारी धारणाएं होंगी वैसे ही हमारे विचार होंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पर, और खासकर पेरेंट्स को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और यही रियल सेंस में पेरेंटिंग है कि मैं उसकी बात को डायरेक्ट रिजेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है बेटे, नई नई जगह जाना पड़ता है, तुम नई जगह जाओगे, नई चीजें सीखोगे, तुम बड़ी कैसे बनोगी, तुम सीखोगी कैसे, ये उपदेश देने की बात हो गई, उसकी बात को रिजेक्ट करने की बात हो गई, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात हो गई। देखिए बच्चा बहुत ही कोमल मस्तिष्क का प्राणी होता है, उसकी चेतना बहुत कोमल होती है, पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों से उसकी चेतना को ठेस पहुंच जाती है। और अगर हम उसकी बातों को बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे तो होगा क्या कि फिर वो अपना बात रखना ही भूल जाएगा, अपनी बात वो नहीं रखेगा, क्योंकि मालूम है कि मेरी बात सुनी नहीं जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, बार बार मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। देखिए वो इन चीजों को सैद्धांतिक रूप से वो हमारे सामने नहीं बता सकता, लेकिन वह इन बातों का अनुभव करता है। लेकिन अगर हम उसे इस तरीके से समझा दें तो वह फिर एक बहुत ही तर्कवादी व्यक्ति के रूप में इमर्ज होता है। तर्क कि हर चीज को वो लॉजिक तरीके से देखने और सोचने और समझने का आदि हो जाता है। और बट नेचुरल है कि जब हम किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी समस्या को, किसी भी घटना को लॉजिक तरीके से देखने समझने लगते हैं तो हमें उसका निदान भी मिल जाता है, क्योंकि वो लॉजिक है। अब ये बात अलग है कि हम उस लॉजिक को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो मित्रों, आज के मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट के इस विषय के जरिए खासकर अपने प्रिय श्रोताओं से, जिनमें अभिभावक भी होंगे, माता पिता भी होंगे, उनसे भी कहना चाहूंगा, या ऐसे भी प्रिय श्रोता हैं होंगे हैं ही जो अभी अभिभावक तो नहीं है लेकिन आगे अभिभावक बनेंगे, उनसे अर्ज करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इसी तरह से अगर विकसित करने की आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यही बच्चा बड़ा होकर के कितना एक शानदार नागरिक बनता है, समस्याओं से कैसे जूझकर उन्हें समझ करके उनके हल निकाल लेता है, एक बहुत अच्छा जीवन जीने के रास्ते तैयार करता है। और माता पिता होने के नाते अगर हम अपने बच्चों को इस रूप में देखते हैं तो इससे बड़ा सुख हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।